जगदम्बा है संगम युग में और लक्ष्मी है सतयुग में।
दो तुम परिवार
सतयुग होगा और उसमें लक्ष्मी होगी। जगदम्बा लक्ष्मी का पद नहीं पाती है, महालक्ष्मी बन सकती है संगम युग की। माने लक्ष्मी के और जगदम्बा के संस्कार मिलकर के अंत में एक हो जाएंगे। जगदम्बा में है सामना करने की ताकत, लक्ष्मी में है सहन करने की शक्ति, दोनों शक्तियां मिलकर एक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा। कृष्ण मथुरा में पैदा हुआ था, वो अपनी जन्मभूमि में क्यों नहीं जाता था, वृंदावन में क्यों रहता था गावड़े में?
तो जैसे तक मार समझा
ना, नहीं कंस उसको मारने के लिए तैयार था, इसलिए छुप के गावड़े में रहता था। राम ने अयोध्या में रह करके रावण से लड़ाई क्यों नहीं की, जंगल में क्यों छुपा छुपा फिर रहा था?
सीता को ले गया इसलिए।
सीता को ले गया लेकिन जंगल में क्यों रह करके लड़ाई की?
पिताजी का
पिताजी
चतुर्वर्ष के लिए वन में रहना पड़ता
नहीं,
पिता का बचन के लिए
इसलिए लड़ाई की जंगल में रह करके, कि उसको रावण से सीधे युद्ध नहीं करना था। लोग समझते हैं बाहुबल का युद्ध किया, लेकिन बाहुबल का युद्ध करना ही नहीं था। शंकर जी भस्मासुर के डर से इधर उधर भागे भागे दुनिया में क्यों फिरे?
शंकर जी तो जो बल दिया है तो नहीं सोचा, जो हम तो बल दिया है जिसके मस्तक में हाथ रखेगा उसके मस्तक
तो वो मोहिनी रूप ने विष्णु जी ने कैसे सामना कर लिया उसका? कभी कभी क्या है, बाहुबल से सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय युक्ति से काम निकालना पड़ता है। अभी सन 98 का एक बार तो देखा हुआ है, उन्होंने तो बाहुबल दिखा करके और रिश्वत दे करके प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, अखबार वालों को, और बाबा को जेल में डलवा दिया। अभी कोई दोबारा गलती फिर करनी है? राज्य किसका है? मधुबन में भी माया आती है कि नहीं? माया का राज्य हो गया।
उनके जो मन में इच्छा जाते ना जो बाबा को देखने के लिए जो करने रहते हैं उधर में,
बाबा कहते हैं अव्यक्त बन जाओ। कितने साल से बोल रहे हैं अव्यक्त हो जाओ अव्यक्त हो जाओ। जो टीचर्स हैं वही अव्यक्त नहीं बनेंगे तो स्टूडेंट कैसे बनेंगे? अव्यक्त नहीं बनना है, बनना है तो कैसे बनेंगे? जब ऐसे नहीं बनेंगे तो ऐसे तो बनेंगे?
अभी नहीं जाएगा, कंपनी में नहीं जाएगा।
जाएगा
समझ इसको
है, लड़ाई पूरा होगा तो जाएगा। फरुखाबाद में भी मिलना बंद कर दिया, फिर चंडीगढ़ में भी मिलना बंद कर दिया, दिल्ली में भी मिलना बंद कर दिया, दिल्ली में पार्कों में मिलते थे वो भी मिलना बंद कर दिया। माया कहती कि मैं नहीं मिलूंगी तो मैं किसी को नहीं मिलने दूंगी। अब जब चारों तरफ से बंद हो गया तो
बाबा
अभी बाबा घरों घरों में जाके मिल रहे हैं। एक बार ऑल इंडिया टूर लगाएगा तो कम से कम 100-200 आदमियों से मिलना हो जाएगा। अभी जम्मू हो गया 8-10 आदमियों से नहीं, उसे मिलना हो गया। हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, हिम्मत करो तो मदद कर देता है।
बेसिक सेंटर है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग,
आर्मी कैसे भी कोई नहीं निकला। बेसिक सेंटर स्ट्रांग नहीं है, ये इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले स्ट्रांग, और कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। जो क्रिश्चियंस हैं और जो मुसलमान हैं वो कभी दूसरे धर्म के शास्त्रों को ज्ञान को नहीं सुनते, तो शूटिंग कर रहे हैं कान में उंगली दे लो। उनका कहना है जब दादी मानेगी कुमार का दादी
तब
हम मानेंगे, तो जो जिस धर्म का होगा वो
एकदम
जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। और कुमार का दादी इस्लाम धर्म में जाने वाली है मुसलमान धर्म में, तो वो उन्हीं की बात मानेंगे। मुरली तो बोला हुआ है, डायरेक्ट मुरली सुनेंगे तो फर्स्ट क्लास है, टेप रिकॉर्ड से सुनेंगे तो सेकंड क्लास है, और कागज में मुरली पढ़ेंगे सुनेंगे तो थर्ड क्लास मुरली। तो फर्स्ट क्लास मुरली कहां से मिले? जब पहचानेंगे तभी तो फर्स्ट क्लास मुरली मिलेगी। तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी तो तुलसीदास जी की रामायण कोई सुनना नहीं चाहता था। ऐसे ही होता है, सच्चाई जब निकलती है तो उस समय उसका ज्यादा मान नहीं होता, बाद में उसका बहुत मान होता है।
जीसु क्रिस्ट
हाँ जी
पहले तो इतना मान नहीं है,
सूली पे चढ़ा दिया, फिर बाद में अब दुनिया में सबसे
कितना किताब, कितना किताब निकला।
अब दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या क्रिश्चियन की है।
अरे निश्चय पत्र है ना, वो देखने के बाद उनको गुस्सा आ गया। निश्चय पत्र
ज्ञान में चल रही है,
बेसिक घर में बेसिक सेंटर,
बेसिक सेंटर है तो उन्हें मुरली नहीं सुनते हैं। मुरली में तो लिखा हुआ है कि लिखवा लेना चाहिए। उनका एड्रेस बताओ कौन है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। एक बार लिखा 100 बार बक्का, मुंह से आदमी 100 बार बोल दे और एक बार लिख दे तो वो ज्यादा वैल्यूबल है।
वो मानते नहीं है ना,
तो मुरली को नहीं मानती ना। वो मुरली में जो बात लिखी हुई है माउंट आबू की तो मुरली है, सब हिंदी में है। अब असम वाले हिंदी जानते नहीं है उतनी, तो मुरली में क्या क्या बोला है उनको ये पता भी नहीं है। वो जैसा बता देंगे वैसा ही मानेंगे।
22 साल हो गया घर में सेंटर है,
22 साल में हिसाब कितना बना पढ़ाई लिखाई का, 0 है। छोड़ने वाले तो है ही नहीं, सारी दुनिया को साथ में लेके जाना है। जब पढ़ाई पढ़ाते हैं मुरली की तो मुरली की पढ़ाई से मुरली के पॉइंट से मारा जा सकता है ना कि देखो मुरली में तो ये बात लिखी है।
बेसिक का सेंटर जब बन जी उधर में रहते हैं वो लोग जैसे समझते हैं वो समझते हैं।
देहधारियों को बदलता है ना, बाबा की मुरली की तो फायदा नहीं है। मुरली के ऊपर फायदा होना चाहिए, मुरली से प्यार तो मुरली घर से प्यार, देहधारियों से प्यार हो गया और देहधारियों से प्राप्ति होगी। मुरली से प्यार होगा तो मुरली घर से प्राप्ति होगी। गीता में भी तो लिखा है जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, जो मेरे उपासक है वो मेरे से डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं। तो किससे प्राप्ति करना अच्छा है? आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। माना कोई भविष्य में ऐसा टाइम आने वाला है ना जो कुछ बच्चों को डायरेक्ट बाप पढ़ाई पढ़ाएगा और किसी देहधारी से नहीं पढ़ेंगे। 8वीं पास कर लेते हैं, 10वीं पास कर लेते हैं, चपरासी बन जाते हैं।
नहीं आते गुलजार दादी तौर में
तो
बोलते नहीं के
क्या
बाबा ने ब्रह्मा को तो आते हैं
तो बोलते हैं, बाबा तो बोलते हैं कि देवताओं को इशारा दिया जाता है और जो मनुष्य होते हैं उनको बोल के समझाया जाता है। यहाँ तो बोल के भी समझा रहे हैं अद्वैतवाणी में, बोलते तो हैं, बता तो दिया है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो वैसे बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। और तो गांधारी ने जैसे जानबूझ करके पट्टा बांधा हुआ था आंखों पर ऐसे जबरदस्ती, सच्ची बात को न मानना उसके लिए क्या किया जाए? अद्वैतवाणी में तो 20 बार बोला हुआ है।
प्रकाशमणी दादी तो सब जानते हैं,
प्रकाशमणी दादी ही तो गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध करके बैठी हुई है जानबूझ के अड़ियल चुनाव किए। अभी तो उनको सुनाई भी नहीं पड़ता। एडवांस पार्टी के 10-15 लोग गए थे अंदर बात करने के लिए दादी से, तो कान की मशीन उतार के रख दी, भाई लोग बोलते रहे वो अपने टब से सुनती रही, कोई जवाब नहीं। मानना चाहे और फिर शिव बाबा की भी बात मानना चाहे तो एक संगठन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। महात्मा बुद्ध की भी बात माने तो फिर कहे कि हम इब्राहिम की भी बात मानेंगे, फिर शिव बाबा की भी बात मानेंगे तो बातों में तो क्रॉस हो जाएगा। हाँ, तो एक संगठन नहीं हो सकता। संगठन सिर्फ उन्हीं का एक हो सकता है जो परिवार के जो मुखिया माता पिता है उनकी बात माने, पिता की बात माने, माता पिता की भी नहीं, माता की भी बात में फ्रिक्शन हो सकता है। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा की बात के ऊपर चलेंगे तो एक परिवार बन सकता है, एक संगठन बन सकता है, नहीं तो फ्रिक्शन पड़ता रहेगा। तो जो भी है मतलब छटक के अलग होने वाले हैं, और उनसे ये कहना है कि मुरली में जो बातें बोली हुई हैं उन्हीं को आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? मुरली में जो बातें बोली हुई हैं उनको तो फॉलो करना चाहिए ना। मुरली तो हमारी माता है, ब्रह्मा के रूप से बोली गई है ना। तो गीता माता को नहीं मानेंगे तो हिंदू का ही है। हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र तो गीता है, तो अगर गीता की बात नहीं मानेंगे तो गीता की जैसे हमने दुर्गति कर दी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि तीखी होती है, कोई कोई बहुत प्रश्न करते हैं, तो माँ बाप का काम है कि जो बड़े हैं बड़े भाई बहन हैं उनका काम है उनका उनको जानकारी देना, समाधान देना।
बोला जी कमला माता किससे माता का
कैसे माता हुआ? अच्छा, कोई भी पुरुष की स्त्री कैसे होती है? कोई भी पुरुष होता है उसकी कोई स्त्री कैसे बन जाती है?
वो तो कन्या है, माता कैसे हुआ?
कन्या है माता कैसे हुआ?
मैं बात कर रहा
हूं। कन्या को स्वीकार किया जाता है ना, परिवार चलाने के लिए कन्या को स्वीकार किया जाता है ना, तभी तो कन्या माता बन जाती है परिवार का पोषण करने के लिए।
ये तो जानता है ना हेम माता सब कुछ, हेम माता तो सब कुछ जानते हैं। हाँ। तो भी ऐसा प्रश्न कर दिया
उनको जवाब दो कि दुनिया में भी जो माताएं बनाई जाती हैं वो माता किस आधार पर बनती है? पुरुष उनको स्वीकार करता है अपना सहयोग के लिए तभी तो वो माता बनती है। अगर पुरुष किसी कन्या को स्वीकार नहीं करेगा परिवार संचालन करने के लिए तो माता कैसे बनेगी? बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत प्रश्नों का समाधान दो।
नहीं मानता है बाबा, बहुत बात बोलते हैं। माने उन्होंने इसे वीरेंद्र देव देख से कौन है ये हमें आने पड़ेगा, तो दीदी सब भगवान है तो क्यों घूम घूम गुप्त होके रहता है?
गुप्त होके कृष्ण को गावड़े में रहने की क्या दरकार पड़ी थी? वृंदावन में वहाँ कछारों में जाकर के छुप छुप के कंस के डर से क्यों रहता था? वो भी तो तुम्हारा भगवान था कि नहीं?
लगता है।
अच्छा, शंकर जी तुम्हारा भगवान वो काहे के लिए भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागा भागा फिरा? उसको भागने फिरने की क्या दरकार थी पूछो? तो राम तुम्हारा राम जंगलों में रह करके रावण से क्यों लड़ाई लड़ी? वो सारी कथाएं कहाँ की है पूछो मुझे? ये जितनी भी कथाएं शास्त्रों में है वो कहाँ की यादगार है? पूछा ही नहीं?
पूछा तो लोग कैसे कैसे बात करता है ना बाबा,
ठीक है। बहुत क्वेश्चनों का जवाब तो अपने पास कोई सीमित ज्ञान किताबी ज्ञान थोड़ा ही है। अपना ज्ञान भी तो असीम है, सागर है, सागर में तो सारी दुनिया समझ आएगी।
जिम्मेवार के साथ साथ ड्रामा निभा रहा है,
सभी निभा रहे हैं, सब ग्रहस्थ में रहने वाले ही है ना।
जंजाल भी है, जंजाल भी है, लेकिन जैसे हम लौकिक में जिस्मानी पढ़ाई से ड्रामा सेंस कर सकता हूँ, ऐसे हम रूहानी ड्रामा सेंस कर सकता हूँ क्या?
क्यों नहीं, लौकिक अलौकिक दोनों तोड़ निभाने के लिए तो बोला ही है, तोड़ निभाना है।
अच्छा।
और पूरा पूरा उनकी डायरेक्शन पर नहीं चलना है, उसके लिए तो बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है।
नहीं सोचते हुए भी आ जाते
हैं,
जिम्मेवारी
नहीं, जिम्मेवारी उठानी है,
कठिनाई आ जाते हैं।
कठिनाई जो भी हमारे सामने विघ्न बाधाएं आ रही हैं, कठिनाई आ रही है, वो हमारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ही आ रहा होगा ना।
अच्छा।
कोई नया तो नहीं आ जाएगा।
अच्छा।
हमने कुछ उल्टा किया होगा तो हमारे सामने कठिनाई आएगी।
अच्छा।
हमने दूसरों के सामने कठिनाई पैदा की होगी तो कठिनाई आएगी।
अच्छा।
तो दूसरों के सामने कठिनाई पैदा नहीं की होगी तो हमारे सामने क्यों आएगी? इसलिए अभी तो टाइम है, देते जाओ दूसरों को, दूसरों की कठिनाइयों में सहयोगी बनते जाओ, बस कठिनाई को निवारण करते जाओ, अपनी कठिनाइयों का भी निवारण करना। लेकिन अपने सामने जो भी विघ्न बाधाएं या कठिनाइयां आती हैं वो हमारा किया हुआ ही कर्म है जो हमारे सामने आ रहा है। खुशी खुशी एक ऋण होता है तो चुक तो किया जाता है, हमारे ऊपर ऋण है।
और जो हमें इतिहास में मिला है,
है?
जो इतिहास
हिस्ट्री
हमारा पुराने जमाने में डायनासोर था।
डायनासोर वाली बात जो है वो कैलकुलेशन वैज्ञानिकों का गलत है। वैज्ञानिक आज एक बात कहते हैं, कल उस बात को काट देते हैं। जैसे डार्विन थ्योरी है, वैज्ञानिकों की निकाली हुई थ्योरी थी। उनका कहना था पहले आदमी बंदर था सृष्टि के आदि में, और बंदर से बदलते बदलते उसकी पूंछ खत्म हो गई, वो आदमी बन गया। बाद में वो थ्योरी उन्होंने खुद काट दी कि नहीं ये थ्योरी सही नहीं। तो जो वैज्ञानिक है वो मनुष्य है, मनुष्यों से भूलें होती ही रहती है। आज के जो वैज्ञानिक हैं वो डायनासोर को लाखों वर्ष पुराना बताते हैं, वो उनकी थ्योरी गलत है। 2000 साल से पुराना कोई इस तरह का खूंखार जानवर नहीं होता, वो 2500 साल के अंदर की बात है। थे डायनासोर, गड्डियां मिल रही हैं तो ना नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हड्डी को देख करके वो कैलकुलेशन लगा रहे हैं लाखों वर्ष पुराना, वो रहा हूँ। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य वो आज तक जान पाए वैज्ञानिक लोग? वहां से नजदीक से गुजरते क्यों नहीं, डरते क्यों हैं? अरे वहां एक एटम बम डाल दो, बरमूडा ट्रायंगल खत्म हो जाए। डरते क्यों हैं, क्यों डर रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि वो आदर्श शक्तियां हैं। जो अकाले मौत में जो मरते हैं ना, वो सब आदर्श शक्ति बन जाते हैं, भूत प्रेत आत्मा। वो भूत प्रेत आत्माओं का अड्डा है वहां पर, इसलिए वैज्ञानिक लोग उसका पीछा नहीं करते। बड़ा मूला ट्रेंगल का अर्थ ही होता है बड़ी मूल का ट्रेंगल। झाड़ के चित्र में सबसे बड़ी बड़ी जड़ कौन सी है? जड़े है ना झाड़ के चित्र में, सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? अरे झाड़ क्षेत्र में सबसे बड़ी जड़ नहीं मालूम पड़ रही कौन सी है? अरे कुछ जड़े इधर बैठ गई है, कुछ जड़े इधर नीचे की तरफ गई है, कुछ जड़े नीचे भी गई होंगी ना, तो सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? नीचे वाली हुई ना, तो वही ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा जो अकाली मौत में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, वो सबसे मोटी जड़ है, लेकिन उसका फाउंडेशन सड़ गया है, दिखाई नहीं पड़ती, आंखों से ओझल है। तो वही आत्मा है जो शरीर छोड़ छोड़ करके जा रही है, सूक्ष्म शरीर धारण जिन्होंने किया हुआ है, उनका एक अड्डा है वहां पर। वो स्थूल अड्डा है, कंपिल में सूक्ष्म अड्डा है। जो उस अड्डे में जाते हैं वो बड़े बड़े एरोप्लेन रूपी मनुष्य वो सब ठंडे हो जाते हैं वहां जाके, चाहे कितनी बड़ी महारथी हो। वो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भी वहां जाकर के ज्ञान सुन करके किसी में प्रवेश करके उनका भी उद्धार हो जाता है, उनकी भी सूक्ष्म शरीर से सदगति गति हो जाती
है। बाबा फुटपेट का मतलब क्या है? फुटपेट
जो आत्माएं अकाली मौत में शरीर छोड़ देती है, उनकी आयु पूरी नहीं हो पाती, तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करके अपना कार्य करती है।
लौकिक में तो फुटपेट
भटकती रहती है।
लौकिक में फुटपेट का बात,
ब्रह्मा बाबा क्या है? ब्रह्मा बाबा गुलजारदा जी में प्रवेश करते हैं, वो क्या है बताओ? भूत प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं, एक इविल पार्ट बजाने वाले और एक अच्छा पार्ट बजाने। जो अच्छा पार्ट बजाने वाले उनको फरिश्ता का एक कहा जाता है, और जो इविल पार्ट बजाने वाले उनको घोस्ट कहा जाता है,
फुट कहा जाता है,
भूत प्रेत प्रेत। हंगामा मचाते हैं
सब भूत प्रेत। जो आत्मा है अंतिम में उनको क्या होगा?
वो जो जब तक सूक्ष्म बतन समाप्त नहीं होगा, जब तक परम धाम में आत्माएं नहीं जाएंगी, तब तक सूक्ष्म बतन में भूत प्रेत इकट्ठे होते रहेंगे। आज कितनी अकाली मौतें हो रही है, है? अभी मद्रास में जो कुछ हुआ सुनामी लहरों का, तो कितने मरे अचानक मर गई ना, वो सब भूत प्रेत, भूत प्रेत बन गए, सूक्ष्म बदन में है, मौजूद है,
वो जन्म नहीं लेते।
तो हाँ, उनको जब तक उनकी आयु पूरी नहीं होगी तब तक जन्म नहीं लेंगे। आयु पूरी हो जाएगी उनको जन्म लेना पड़ेगा।
और अंतिम में,
अंतिम में तो फिर दूसरा शरीर लेकर के फिर ज्ञान लेंगे। ज्ञान लेने के बाद तो सबकी सद्गति होगी।
अभी अभी जो शरीर सत्य है वो तो फिर जन्म लेंगे।
अकाल्य मौत में,
अकाल्य
इनकी अकाल्य मौत, अचानक मौत हो जाती है।
वह लोग फुटपेट बन सकते हैं?
हाँ, सकते नहीं, बनते ही हैं।
बनते ही
हाँ जी, बन सकने का सवाल नहीं। हार्ट फेल होकर के मौत हो गई,
एक्सीडेंट में,
एक्सीडेंट में मौत हो गई, या और किसी कारण या कारण से मौत हो गई, ब्रेन फेल हो गया, तो ऐसी आत्मा है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है।
जब उनको आयु पूरा हो जाएंगे फिर जन्म लेंगे।
जन्म लेंगे, लेकिन उनमें ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं नहीं आती, क्योंकि उन्होंने तो पूरा बेसिक नॉलेज लिया हुआ था। तो बेसिक नॉलेज की जिनके अंदर पूरी धारणा थी, लेकिन एडवांस नॉलेज नहीं है, तो वो आत्मा है, तो राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगी। उनको अब इस सृष्टि पर साकार जन्म नहीं लेना, जैसे मनमोहनी दीदी हैं, जैसे विश्वेश्वर भाऊ हैं, या जैसे ये चंद्रमणि दादी है, ये जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं, वो ब्रह्मा बाबा की तरह पार्ट बजे ग्रुप की नहीं होती, वो भी एक के डायरेक्शन में नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि वो सारे ब्रह्मा बाबा के कंट्रोल में चलने लग पड़ेंगे, नहीं, उनके अपने अपने ग्रुप हैं, उन ग्रुप का जो मुखिया है उसी की बात पर चलेंगे, उसी कार्ड पर चलेंगे।
जो ज्यादा अच्छा काम करते हैं उनका हेड अच्छा
है?
जो अच्छा काम करते हैं वो उनका
ज्यादा
है,
ज्यादा अच्छा काम करने वाले भूत प्रेत बनते ही नहीं,
अकस्मात जो मरते
हैं। हाँ, वो भूत प्रेत नहीं बनते, जो अच्छा काम करने वाले होते हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए हैं, वो उनको भूत प्रेत बनने की क्या दरकार?
अकस्मात मरते
हैं। अकस्मात मरने वालों के भूत प्रेत क्यों बनेंगे? उनको तो साकार शरीर से देवता बनना है या तो मनुष्य बनना है।
लौकिक में जो अच्छा काम करते हैं ना,
लौकिक में, लौकिक में ही जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कार्य किए हैं, वो भूत प्रेत अचानक मौत उनकी क्यों होगी?
सुनामी लहर में तो कितने लोग,
तो कुछ न कुछ उल्टे कर्म किए हैं ना, तो प्रकृति ने उनको ऊपर प्रकोप कर दिया। प्रकृति का प्रकोप जो है, जो प्रकृति पति आत्माएं हैं उनके ऊपर नहीं होगा। प्रकृति पति है सूर्य, सूर्य और सूर्यवंशी जितने भी होंगे उनके ऊपर प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद जलते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते। सूर्य क्या करता है? खुद जलता है ना, खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। सारी दुनिया सूर्य के आधार पर चल रही है। भूत प्रेत आत्मा जो है वो तो थर्ड कैटेगरी की आत्मा है, इसलिए गीता में कहा जो भूत प्रेतों के उपासक है वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं अल्पकाल की, जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, जो मेरी उपासना करने वाले हैं वो मेरे से डायरेक्ट जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करते हैं। यह भी ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में देखा जाए तो ज्ञान सूर्य की मुरली के आधार पर ही चलने वाली आत्माएं कितनी है, जो कोई दीदी दादी दादाओं को नहीं मानती। ऐसी आत्माएं कितनी है? मुश्किल से 10%। जो शिव बाबा की मुरली को ही प्रधानता देती है, कोई व्यक्ति को नहीं माने। उनके लिए तो स्लोगन बाबा ने मुरली में जो दिया हुआ है वो स्लोगन ही सबसे अच्छा स्लोगन है। देहधारी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, एक सदगुरु निराकार से सदगति।
सब आने वाले महाविनाश में जो नेचुरल चेंजिंग होगा, प्रकृति का चेंजिंग होगा, प्रकृति का
परिवर्तन होगा,
उस परिवर्तन में हिमालय पहाड़ के दब जाएगी रहेगी?
हिमालय पहाड़ दब क्यों जाएगी? पहाड़ पहाड़ भी रहेंगे, लेकिन सब पहाड़ नहीं रहेंगे। पृथ्वी में जब भूकंप होता है तो कोई पहाड़ नीचे चले जाएंगे, कोई रहेंगे। समुद्र के जो भारत के किनारे किनारे के जो जैसे बम्बई वगैरह को तो बाबा ने पहले ही बोल दिया है कि सब पानी के गर्त में चले जाएंगे। तो बम्बई जैसा नगर जब पानी के गर्त में जाएगा तो ये जो बाद में आए हुए महाखंड हैं ये अफ्रीका और अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया ये सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे, न पहले थे न रहेंगे, सिर्फ भारत खंड रहेगा। भूकंप तो एक ऐसी चीज है जिसमें भयंकर परिवर्तन होते हैं संसार में। दुनिया की सबसे ज्यादा विनाश होगा भूकंप से, एटम बमों से उतना नहीं हो पाएगा। हाँ, एटम बम जो है वो प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ देंगे, पृथ्वी के बैलेंस को बिगाड़ेंगे। पृथ्वी का बैलेंस जब बिगड़ेगा तो भूकंप आएंगे बड़े बड़े, और भूकंपों के आने से जमीन हिलेगी और ऊंची ऊंची इमारतों में जिसमें मनुष्य रहे पड़े हैं वो सब दब के मर जाएंगे। सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। है
चंद्र में मानस रह सकते हैं क्या?
हैं? चंद्र में मानस नहीं, चंद्र में मानस गया उसे फायदा क्या होगा? चंद्रमा में मानस गया उसका मतलब ये है कि वो तो गया, वो तो स्थूल में भी गया था 69 में, लेकिन जिस समय आर्म से स्ट्रांग गया था, आर्म से स्ट्रांग का बेहद का अर्थ है आर्म माने भुजा, स्ट्रांग माने मजबूत, माने हाथों में जिसके बहुत बल है, क्या जिसके हाथ बड़े मजबूत हैं, उसका नाम हद की भाषा में रख दिया आर्म से स्ट्रांग। और वो जब चंद्रमा पर गया था तो जो बेहद का आर्म से स्ट्रांग है, जिसकी भुजाएं जिसके हाथ बुद्ध रूपी हाथ बड़े मजबूत हैं, हिलने डुलने वाला नहीं है, वो भी चंद्रमा तक पहुंच गया, उसकी पहुंच हो गई चंद्रमा तक। माने चंद्रमा वाली आत्मा और वो आत्मा दोनों मिलकर के मिल गई, मेल हो गया उनका। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता से शरीर छोड़ने के बाद मिले।
मंगल में भी आपने जमीन ले रहा है,
कौन कह रहा है?
पेपर में दे रहा है।
पेपर में देने वाले जो है वो मनुष्य है या कोई भगवान है?
मनुष्य है,
मनुष्य है।
यहाँ 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 वैल्यू नहीं है आदमी की, और वहाँ जाकर के जमीन लेगा कितने पैसे में जमीन मिलेगी, तुम्हारे कितने काम आएगी? जो मंगल ग्रह में जमीन ली जाएगी वो तुम्हारे कितने काम आएगी? हमारे पास कुछ पैसा है? अच्छा, आज इंडिया में किसी के पास है इतना पैसा जो मंगल में जाकर के जमीन ले?
नहीं, उस दिन पेपर में हाथ का
हम फालतू की बात सुने क्यों? एक बात सोचने की है, पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो जगह ऐसी है जहां सूरज की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है ऐसी, और पृथ्वी के बीच में जहां विषुवत रेखा है वहां पर सीधी किरणें पड़ती है। तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास जो है ऐसा माहौल है जहां जीव जंतु है, और जहां तिरछी किरणें पड़ रही है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में वहां कोई जीव जंतु नहीं। तो पृथ्वी जिसकी सीमित दूरी सूर्य से है, थोड़ी तिरछी किरण होने से ही जीव जंतु नहीं मिल रहे हैं उस जगह पर, तो दूसरे ग्रह उपग्रह तो कितनी दूर और कितने पास हैं सूर्य से, वहां जीव जंतु होने का क्या सवाल? तो मुरली की बात पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए या अखबारों में जो कुछ कह दिया उस बात पर विश्वास कर लेना? अखबारों की बात पर विश्वास करेंगे तो फिर तो कंपनी का पार्टी वो समझ ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि वहां के सारे अखबारों ने, ऑल इंडिया की सारी पत्रिकाओं ने कंपनी वाले बाबा को तो झूठा साबित कर दिया, गंदा साबित कर दिया। दुनिया की बात है हमें क्यों सुनना? हमको एक की बात सुननी है, एक की मत पर चलना है या अनेकों की मत पर चलना है? एक से ज्ञान सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान होगा, अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए तो बाबा ने यहां तक कह दिया कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। तो वो तो अनेक तरह की बातें सुनाते रहते हैं। जो बात न समझ में आई हो सो बताइए, कथा तो नहीं करनी है, तो कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, तो हो गई कथा नहीं, आपको जो बात समझ नहीं आती हो सो बताइए। कंचन का एक बार
अंतरिम में क्या होगा, कंचन का ऐसे
कंचन का है
कंचन का कैसे अंतरिम में कंचन का क्या होगा, कैसे होगा
कंचन का कैसे होगा, जब जब ज्यादा बरसात पड़ेगी, जब ज्यादा एटम एटमिक एनर्जी की गर्मी होगी संसार में पैदा और सूर्य ज्यादा तपेगा तो समुद्र का जो जल है वो आसमान में उड़ जाएगा और आसमान में उड़ेगा तो धुआंधार बरसात पैदा होगी। जब कई दिनों तक लगातार बरसात होती रही तो मौसम ठंडा हो जाएगा, मौसम ठंडा होगा दुनिया में चारों तरफ बर्फ जम जाएगी, बर्फ जमेगी उसमें मनुष्य दब जाएंगे, सब नहीं दब जाएंगे, वो मनुष्य दब जाएंगे जो पहली जनरेशन के होंगे, माने वो सूर्यवंशी आत्मा है 9 लाख वाली 4.5 लाख वाली वो दबेंगी। हाँ जी, और वो उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, उनकी मनबुद्धि आत्मा जो है वो बाबा की याद में ऊपर उड़ेगी, फिर अपने अपने टाइम पर वो शरीर भी बर्फ से निकलेंगे और वो आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश भी करती रहेंगी। जब प्रवेश करेंगे उसी समय वो जोड़े आपस में मिल जाएंगे और उनसे बच्चे पैदा होते रहेंगे।
अच्छा बाबा, रामायण में लिखा हुआ है एक बार राम नाम लेने से पाप विनाश करता है, लेकिन हम तो देखते दापोर से राम नाम लेके आ रहे हैं, लेकिन
भक्ति मार्ग में नाम लेते हैं, नाम की महिमा है भक्ति मार्ग, क्योंकि भगत तो जानते नहीं है कि नाम क्यों है, नाम की इतनी महिमा क्यों है भगत नहीं जानते, और हम ज्ञानी आत्मा की जानते हैं कि नाम की महिमा इसलिए है कि कोई काम किया होगा क्या, हम तो जानते हैं ना कि राम और कृष्ण ने कोई काम किया होगा, तो उस काम के आधार पर भक्ति मार्ग में उनका नाम जपते हैं, हमको नाम नहीं जपना है, हमको उनकी सारी बायोग्राफी जाननी है क्या। हाँ, जब हम सारी बायोग्राफी जान लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि रामकृष्ण में कौन सी सुप्रीम सोल कार्य करती है जिसके आधार वो सारी सृष्टि को पलट देने का काम करते हैं बड़े से बड़ा, हम उस रूप में उसे याद करते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। नाम लेने से क्या होगा, टैप रिकॉर्डर में भर के रहेगा तो 24 घंटा नाम लेते रहे लेता रहेगा, कीर्तन करते रहते हैं 24 घंटे, राम रायदा लगाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, रामायण पढ़ते रहते हैं, गीता पढ़ते रहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं, 24 घंटे पाठ करते हैं, उससे कुछ होगा क्या,
परिचय तो नहीं है,
परिचय तो है ही नहीं,
परिचय तो
है नहीं, पूरा परिचय प्राप्त करके कि वो क्या करके गए हैं तो फिर उसे याद करने से हमारी बुद्धि जो है वो प्रैक्टिकल याद में टिकेगी, और सिर्फ नाम लेने से कैसे बुद्धि टिक जाएगी, बुद्धि को एकाग्र करना है तो उसको आधार सही चाहिए। ब्रह्मा बाबा का आधार ले रहे हैं, मुरली में तो बाबा ने बोला ब्रह्मा को याद नहीं करना, ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना, लेकिन ब्रह्मा भी तो और जो धर्म पिताएं हुए, धर्म नेताएं हुए, महात्माएं हुए, उनकी तरह आए और शरीर छोड़ के चले गए, परिवर्तन क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, या जैसे गांधी जी आए और राम नाम करते करते चले गए और रावणाराज्य स्थापन हो गया,
नहीं
राम राज्य नहीं स्थापन हुआ और ही रावण राज्य बन गया, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के लिए हुआ, इसलिए दुनिया में ब्रह्मा बाबा की न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं, न चित्र बनते हैं, न उनको कोई याद करता है, क्यों अधूरे स्वरूप को कोई नहीं मानता, जो कार्य संपन्न करके जाता है, काम पूरा करके जाता है, तो 3 मूर्तियों में 2 मूर्तियां हैं जो काम पूरा करती हैं, शिव का शंकर और विष्णु।
जब मुकुट में आग लगता है ना, हमारा इधर में ब्रह्म बाबा का पूजन होती है, मुकुट में आग लग जाते है ना,
तो ब्रह्मा बाबा पूजा होती है।
ब्रह्मा जो देवता सीते है ना, तो पूजा
तीन मूर्ति का
मूर्ति का पूजा होता है।
चार मुख वाला ब्रह्मा
की घर द्वार जो जल जा रहे थे, तीन चार मूर्ति वाला
ब्रह्मा का
जो है पूजा किया
है। चार मुख वाला ब्रह्मा का मतलब चार आत्माएं, चार आत्माएं, चार आत्माओं में वो जो भी जो चार भुजाएं ब्रह्मा की दिखाई गई है वो मददगार चारों ही आत्माएं आ जाती है, राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां।
आग लगने से
दुनिया में आग लगेगी कि नहीं कभी?
नहीं, जब घर
अच्छा ब्राह्मण की दुनिया में कभी आग लगेगी कि नहीं? पूरी आग तो अभी भी लगी हुई है, लेकिन फाइनल आग अभी नहीं लगी ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब फाइनल आग लगेगी ना, तो ब्रह्मा बाबा की सोल जो है वो कौन से देवता के मस्तक में प्रवेश करके कार्य कर रही है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया मान लेगी, अभी मान रही है। शंकर के मस्तक में जो चंद्रमा है, अधूरा चंद्रमा, उसको सारी दुनिया अभी मान रही है?
नहीं।
अब ब्राह्मण परिवार के सभी लोग मान रहे हैं? नहीं मान रहे। अरे वो मुसलमान भी अभी मानने के लिए तैयार नहीं, जो चंद्रमा का अधूरा चित्र झंडों में लगाते हैं, नोटों में लगाते हैं, वो भी नहीं मान रहे। तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो मुसलमान ऐसे घुसे हुए हैं, जो ब्राह्मण बन करके बैठे हैं, जो द्वापर युग से कन्वर्ट होकर के मुसलमान धर्म में चले जाएंगे, वो कैसे मान लेंगे
चंद्रमा?
वो तो यही बात सिखाएंगे, नहीं नहीं किसी की बात मत सुनो, कान में उंगली दे लो, अल्लाह अकबर, अल्लाह भी याद करो।
चांद के अंदर जो स्टार है ना, उनका मतलब क्या है? चांद जो है ना, उनका फ्लैग में जो चांद है,
वही तो
स्टार है,
वही तो कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वालों में बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा कि तुम ब्रह्मा की बात मानो, मुरली ने तो कहा तुम बात मेरी मानो। क्या ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए हैं वैसे कर्म करो, लेकिन बात मेरी मानो, माने शिव बाबा की बात मानो। लेकिन मुसलमान क्या करते हैं? मुरली को कोई महत्व नहीं देते। क्या ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन में आकर के जो बोलते हैं वह उसी को महत्व देते हैं, और वो भी समझती है शिव बाबा की वाणी है, तो गलत फहमी हो जाएगी ना। तो क्या होता है, जो आसुरी बच्चे होते हैं वो आसुरी बच्चे बाप की तरफ नहीं झुकते हैं, बाप की तरफ उनका प्यार नहीं उतना नहीं होता है,
बाप डांटते हैं,
वो मारता है, पिटाई कर देता है, तो माँ की तरफ झुक जाते हैं, माँ से मनमाना काम मनवा लेते हैं, मनमाना काम करवा लेते हैं, तो उनको वो माँ पसंद आती है। वो माँ है ब्रह्मा बाबा, जो कि अभी अधूरा शरीर छोड़, अधूरा पुरुषार्थ करके शरीर छोड़ गए, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गए, तो वो अधूरा चंद्रमा को अभी तक भी मान रहे हैं, यज्ञ के अंदर मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को ही मान रहे हैं, वो उसी को गीता का भगवान मान रहे हैं। अगर दुनिया में कोई गीता का भगवान, गीता ज्ञान सुनाने वाला हुआ है तो कौन हुआ है, किसको मानते हैं? गीता का ज्ञान अगर कोई सुनाने वाला, कोई साकार में भगवान हुआ है ज्ञान सुनाने वाला, तो उनकी दृष्टि में कौन हुआ है? अरे दादा लेखा ब्रह्मा बाबा।
किस
ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में दुनिया में गीता ज्ञान सुनाने वाला मुख कौन हुआ है?
ब्रह्मा
बाबा, दादा लेखा। किताबों में छपाते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और इधर माने यही बैठे हैं कि कृष्ण की सोल ही दादा लेखराज के रूप में गीता का भगवान है, तो विरोधी बातें हो गई ना। कृष्ण की सोल दादा लेखराज थोड़ी गीता का भगवान है, गीता का भगवान तो वही निराकार शिव जो ब्रह्मा में प्रवेश करके वाणी चला रहा था, उनका शरीर छोड़ने के बाद जो शंकर में प्रवेश करके तीसरे नेत्र के रूप में कार्य कर रहा है, वो निराकारी स्टेज वाला गीता का भगवान है।
लौकिक में तो कृष्ण को गीता का भगवान माना है।
लौकिक में गीता का भगवान, तो लौकिक वाले सफल हो गए स्वर्ग बनाने में?
नहीं नहीं,
फेल हो गए ना। तो ये फेल होने का कारण है, गीता का जो भगवान है वो चेंज कर दिया, गीता का भगवान साकार को मान लिया, बच्चे को मान लिया, ये गलती की है। उस कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला कौन? अरे कृष्ण बच्चा जन्म लेगा सतयुग में, उसको जन्म देने वाला कौन? कोई तो रचयिता होगा कि ऊपर से टपकेगा परमधाम से, परमधाम से नीचे आ जाएगा क्या?
नहीं नहीं, नहीं।
कोई गर्भ से जन्म लेगा ना, हाँ। तो उसका माता पिता कौन?
पशुपति देव की
और तो लौकिक
लौकिक है, लक्ष्मी नारायण
नाम दिया है,
लक्ष्मी नारायण
तो संगम भी लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं डायरेक्ट लक्ष्मी वो नारी से लक्ष्मी बनते हैं उनको बीच में प्रिंस नहीं बनना पड़ता किनको संगम भी लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट नर से नर तन से पुरुषार्थ ऐसा करते हैं कि नर से नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं उनको प्रिंस और प्रिंसेस नहीं बनना पड़ता वो ही उनके माँ बाप होंगे तो बड़ा पुरुषार्थ किसका हुआ जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं वही रचयिता हुए ना वो पहले प्रिंस के रचयिता हुए जो सत्युग में पहला प्रिंस होगा उसके रचयिता हुए तो वही सारी सृष्टि का रचयिता माना जाएगा तो वो गीता का भगवान होगा उसी आदि नारायण का नाम आदिदेव रख दिया है आदिदेव को शंकर जी कहा जाता है शास्त्रों में तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण है तुमसे विश्व से परम निदान सारे विश्व का माता पिता कहा जाता है जगत पिता कहा जाता है उनको जन्म देने वाला कोई नहीं है वो सारी सृष्टि का जन्मदाता है उनका माता पिता कौन है आज तक किसी को मालूम ही नहीं
किसमें को तो ज्यादा मान देते हैं किसमें को ज्यादा मान देते हैं
इसीलिए तो दुनिया नीचे गिर गई कि बाप को छोड़ दिया और बच्चे को पकड़ लिया अगर बच्चा ही गीतापति भगवान बन जाएगा तो जुल्म हो जाएगा ना पाप इससे ऐसे बड़ा पाप क्या होगा कि जो बच्चा है वो ही माता का पति बन के बैठ जाए इससे बड़ा कोई पाप हुआ क्या दुनिया में
नहीं।
तो वही पाप हो गया दुनिया नीचे गिर गई यही पाप ब्रह्म कुमारी में हो रहा है जो बाप है यज्ञ के आदि में जो यज्ञ पिता था जिसके डायरेक्शन में मम्मा बाबा भी चलते थे उसका नाम निशान गायब कर दिया
इसलिए यह दुनियापति हो गया
तो दुनियापति तो हो गई गीता खंडित हो गई माने जब गीता माता ही खंडन हो गई जो सब धर्म शास्त्रों का माई बाप है तो फिर तो पतित होने से कौन बचेगा सारे नीचे गिरेंगे सारे ही पतित हो पड़ेंगे सारी दुनिया गड्ढे में जा रही है
बेसिकली तो ऐसे बोलती है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है
कृष्ण नहीं है लेकिन कृष्ण की आत्मा यहाँ यज्ञ में थी कौन साकार में कौन था
साकार में तो गीता माता
ब्रह्मा बाबा था ना तो ब्रह्मा बाबा इज इक्वल टू कृष्ण वाली आत्मा हुई ना वही ब्रह्मा उर्फ कृष्ण हुआ ना उसी को तो वो गीता भगवान मानते हैं साकार में गीता ज्ञान दाता दाता माने मुख से ही देगा ना तो वो साकार में मुख से ज्ञान देने वाला स्वरूप कौन
ब्रह्मा
बाबा तो गीता का भगवान कृष्ण की सोल हो गई ना मुरली में तो बोलते हैं वो साकार जो कृष्ण बच्चा पैदा होता है वो गीता का भगवान नहीं है वो बच्चा है सृष्टि का पहला फिर उसका पिता कौन है उस सृष्टि के पहले बच्चे को जन्म देने वाला जन्मदाता पिता कौन है वो नारायण है वो ही गीता का भगवान हुआ तो उसको तो उन्होंने भुला दिया
तो दिया गीता का भगवान तो शिव बाबा है कृष्ण
शिव बाबा जिसको तुम शिव बाबा कहती हो वो तुम कहती हो बिंदु को बिंदु बाबा नहीं है बिंदु जब किसी शरीर में प्रवेश करता है तो बाबा
है। लेकिन और ये क्या है क्या पूजा सब जितना जितना पूजा है वो तो मानते हैं सब भोग देता है
तो अभी 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 ब्रह्म कुमारी में क्या हो रहा है
तो
सारी दुनिया में भी ऐसा ही होगा अगर ये बेसिक में ब्राह्मण जो है गलती करेंगे तो सारी दुनिया वाले भी तो वही गलती करेंगे
कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं
जो भी
मनाते हैं
तो अगर दुनिया वाले जो कर रहे हैं वो दुनिया वालों का कोई दोष नहीं है दोष किसका है जो यहाँ शूटिंग पीरियड में गलती कर रहे हैं जानते हुए भी मुरली की बात माननी चाहिए ना मुरली में तो बोला है ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है ब्रह्मा का चित्र तुम अलग से रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे तो हो गए पतित
बाबा अभी लौकिक वाले और बेसिक वाले के तो कोई फर्क नहीं है
क्या फर्क है वो भी भक्ति मार्ग अपना रहे हैं वो भी भक्ति मार्ग वो भी भोग भोग लगाते हैं मूर्तियों को जड़ मूर्तियों वो भी भोग भोग लगा रहे हैं वो भी भूत प्रीतों की पूजा कर रहे हैं वो भी भूत प्रीतों की पूजा कर रहे हैं
लौकिक में तो भोग लगाते हैं और बेसिक में भोग लगाते
हैं वो भी रथ यात्राएं निकाल रहे हैं वो भी रथ यात्राएं निकाल रहे हैं वो भी भाषण प्रवचन कर रहे हैं हम भी भाषण प्रवचन कर रहे हैं
इसलिए लौकिक वाला और बेसिक वाला सेम हो गया
फर्क
फर्क नहीं है दोनों में
फर्क एडवांस में तो फर्क है एडवांस वाले तो इन बातों को नहीं मानते, भक्ति मार्ग के क्रियाकर्म को। अगर मानते भी है कोई तो वो भी उन्हीं के कुल के हैं, उन्हीं के बीज हैं, क्योंकि एडवांस वालों में भी एक तरह के बीज नहीं है, कोई इस्लाम धर्म के भी बीज हैं, क्रिश्चियन धर्म के भी बीज हैं एडवांस में। और जो इस तरह के बीज होंगे वो अभी भी ब्रह्म कुमारियों से मिलकर के एडवांस पार्टी वालों पर हमला कर रहे होंगे, क्योंकि जो कीचड़ है वो कीचड़ में मिलेगा, दूध दूध में मिलेगा, शहद शहद में मिलेगा, शहद और पानी को मिलाना चाहो तो मिक्स नहीं होगा।
बाबा के जो प्रश्न बन रहा है ना, जे कृष्ण का पिता माता कौन होगा, तो होगा जब देव सुर के बाद में आ
जाएगा, बाद में आ जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हें उसकी जानकारी नहीं है ना, जब तुम्हें जानकारी नहीं है तो इससे कृष्ण से ऊपर की जनरेशन कौन सी होती है जो सृष्टि का रचयिता है, उसकी तुमको जानकारी नहीं,
नहीं।
जब तुम्हें जानकारी नहीं तो सृष्टि को कौन सा रास्ता बता रहे, जो सृष्टि के आदि को ही नहीं जानता वो मध्य और अंत को क्या बताएगा। बाबा का ये आदि मध्य अंत तीनों का ज्ञान है, सृष्टि का आदि का भी ज्ञान होना चाहिए, मध्य का भी ज्ञान होना चाहिए और अंत का भी ज्ञान होना चाहिए, तो कहेंगे आस्तिक। अगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है तो कहेंगे नास्तिक। तो किस कुल के हुए, आस्तिक है या नास्तिक है, नास्तिक हो गए,
रावण को,
रावण कुल के हो गए, रावण तो भगवान को भी नहीं मानता, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं मानता, तो चाहते हमारा राज्य यही स्वर्ग है, मैं ही भगवान, अलग से कोई भगवान नहीं होता,
माउंट आबू की स्वर्ग बनता,
माउंट आबू स्वर्ग, अच्छा ईंटों का सुखधाम बनाने से स्वर्ग बन जाए, सुखधाम बन जाता है, शांति धाम ईंटों का बनाने से शांति धाम बन जाएगा, ईंटों का ज्ञान सरोवर बन जाने से ज्ञान सरोवर बन जाएगा। तो ये तो सब स्थूल बातें हैं, जैसे दुनिया में स्थूल बातें उठा लेते हैं ऐसे यहाँ भी उठा ली।
हम लोग जब माउंट आबू में गया तो बहन जी लोग बोलते हैं तुम भी फ्लैट ले लो, जगह खरीद कर लो, कल जब विनाश हो जाएगा सब माउंट आबू में।
वो तो ठीक बात है, वो तो मुरली में बाबा ने बोला है कि बाहर की दुनिया में प्रॉपर्टी खरीदने से कोई फायदा नहीं, अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, लेकिन माउंट आबू में तो बच्चे आके रहेंगे विनाश के टाइम पर,
बोले थोड़ा जगह ले लो,
तो वहाँ अगर प्रॉपर्टी खरीदी भी जाती है तो ब्राह्मण बच्चों के काम आएगी, अच्छी बात है। अभी तो वहाँ सस्ता है, इस राज को कोई जानते नहीं है, इसलिए बेच बात के चले भी जाएंगे वो लोग, आगे चल के जब उनको भी सच्ची बात का पता चलेगा तो वो तो लाखों की चीज को करोड़ों अरबों में बेचेंगे।
आसम नहीं रहेगा, आसम ये जो आसम है ना विनाश के टाइम नहीं रहेगा,
क्या नहीं रहेगा,
आसम
आसम
नहीं बसेगा क्या,
दिल्ली माना आपने 84 जन्म आसाम में ही लिए हैं क्या,
तो माउंट आबू में खरीद करना चाहिए, माउंट आबू में जाकर खरीद करना चाहिए,
लेकिन आपका लगाव आसाम में लगा हुआ है क्योंकि आप शरीर यहाँ पैदा हुआ है,
नहीं नहीं यहाँ पैदा नहीं है,
आपका शरीर यहाँ का पैदा हुआ नहीं है, कहाँ का,
बंगाल में, कुछ भी
बंगाल का पैदा हुआ है, अच्छा तो बंगाल में प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे,
है
सिलीगुड़ी में है, फिर क्या बात है,
गीता पाठशाला चल रहा है उधर,
अच्छा अच्छा अच्छा
अच्छा बाबा, रामायण में लिखा हुआ है राम रावण युद्ध में दुनु की सेना मोड़े, राम रावण राम राम की सेना और रावण दोनों मोड़े, लेकिन अंतिम में वाल्मीकि ने जिंदा करने के लिए कोशिश की दोनों की सेनाओं की, दोनों सेनाओं की सेनाओं को राम रावण दोनों सेनाओं को
जागरण कर दिया,
जागरण करने के लिए जिंदा करने के लिए कोशिश की, लेकिन रावण का सेना जिंदा हो गई थे लेकिन राम की सेना जिंदा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है,
ऐसा तो कुछ नहीं आया, तुमने मतलब भिन्ना जैसा जो आया उसने वैसा लिख दिया, 20 तरह की रामायण लिखी गई है, किसी रामायण लिखने वाले ने ऐसा लिख दिया हो, वहाँ तो लिखा हुआ कि जब राम रावण युद्ध पूरा हुआ तो बंदरों को वस्त्र बांटे गए हैं, क्या हाँ जब नई दुनिया आएगी तो जो भी राम की सेना के बंदर हैं उनको वस्त्र मिलेंगे, उनकी कंचन काया बनेगी, है तो वो सही है या उनको वस्त्र ही नहीं मिले और राक्षसों को वस्त्र मिल गए, तो राक्षसों को वस्त्र मिल जाएंगे तो सतयुग में सारे राक्षस ही पहुंच जाएंगे ना, वस्त्र माना क्या, बस माना शरीर। तो किसी न्याय के कह रहे न्याय से किसी ने लिख दिया होगा किसी शास्त्र में।
बर्फ का अंदर जो जिनका एज 85 किसी का एज 15 तो एक एक समान कैसे होगा?
एक समान कैसे होगा माना?
मैंने
अच्छा कंचन का कंचन का के लिए क्या ये जरूरी है कि एज से कनेक्शन है उसका, उसका याद से कनेक्शन है, याद और पुरुषार्थ से कनेक्शन है, आत्मिक स्थिति से कनेक्शन है। चाहे बूढ़ा हो और चाहे उम्र का बच्चा हो, अगर उसकी आत्मिक स्थिति पक्की है तो उसी कंचन काया बनेगी। आत्मिक स्थिति पक्की नहीं है तो बर्फ में दबने से पहले ही मर मिल जाएगा
ऊपर सीधा ऊपर
शरीर छोड़ेगा और ऊपर चला जाएगा।
बहन जी हम एक ग्रुप पूछा था कृष्ण का माँ बाप कौन होगा, माँ बाप कौन होगा बेसिक में पूछा था, मतलब होगा होगा कौन? राधा नेपाल में राधा को जन्म हो गया है, कृष्ण को भी होगा नेपाल में,
नेपाल
राधा का जन्म हो गया तो राधा कहाँ है?
नेपाल में है।
कितने साल से? 66 से है।
साल तो नहीं बताया लेकिन
5 साल पहले सुना नेपाल में राधा का जन्म हो गया,
तो अभी तो 40 साल की हो गई होगी। 40 साल की राधा
नहीं, 5 साल पहले सुना मैंने, अभी राधा का जन्म हो गया।
तो वो जो कुछ भी साक्षात्कार में देखती है उसका अर्थ नहीं समझती है। जैसे बहुत से लोगों को स्वप्न होता है ना, तो स्वप्न की बात पंडित जी से जाके पूछते हैं,
क्या है
महात्मा लोगों से जाके पूछा, हाँ महात्मा जी हमको ऐसा स्वप्न आया, गुरु जी ऐसा स्वप्न आया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझ में नहीं आया तभी तो पूछा। तो ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का अर्थ नहीं समझ में आया था,
12 गुरु
हाँ इतने गुरु धारण किए वाराणसी में भटके चारों तरफ भटके, उनको नहीं समझ में आया। तो ब्रह्मा बाबा को ही नहीं समझ में आया तो उनके जो फॉलोअर ब्रह्मा कुमारी है उनको समझ में आ जाएगा? नई पाल का अर्थ होता है नई दुनिया की पालना करने वाले, माने एडवांस पार्टी। क्या एडवांस पार्टी? के वो लोग जो नई दुनिया की पालना कर रहे हैं 76 से ही, उनकी दृष्टि में वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पुरानी दुनिया आप मुए मर गई दुनिया, उनकी दृष्टि में वो दुनिया खत्म हो गई है। अब नहीं खत्म हो गई तो आगे चल के खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो ईश्वरीय सच्चा ज्ञान ले रहे हैं, जो ईश्वर प्रैक्टिकल में संसार में आया हुआ है, जो ईश्वर सृष्टि को पलट के जाने वाला है, उस ईश्वर के जो बच्चे बनते हैं प्रैक्टिकल में, वो ही नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाली बनेगी।
प्यार दया करके क्या करेगा? जाओ तो
उनको तो भगत चाहिए ना, उनको ज्ञानी आत्माएं नहीं चाहिए। ज्ञान सूर्य से पैदा होने वाले ज्ञानी आत्माएं होंगे। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। किसको? शिव बाबा को। कैसे बच्चे प्रिय है? ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, रामायण में बोला है ना, गीता में भी बोला है, है? तो ज्ञानी जो है वो भगवान को क्यों ज्यादा प्रिय है? क्योंकि ज्ञानियों के द्वारा ही सृष्टि चेंज होनी है, परिवर्तन होनी है। जो बुद्धिहीन जानवर बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, वो सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते।
और बोला था जो ब्रह्मा बाबा तो शरीर अभी छोड़ दिया है बहन जी, अंतिम का कार्य कौन करेगा? तो ये होगा ये दादी के, दादी में
तो दीदी दादा है, दादा है तो सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं।
गुलदा दादी है ना, उसमें तो बाबा आती है, अंतिम का कार्य
कौन? उनका तो हर साल से खून बदला जा रहा है, दूसरों का खून डाला जा रहा है उनके शरीर में। फिर वो तामसी बनेगी या सात्विक बनेगी?
तामसी।
फिर जाने कौन कौन अज्ञानियों का खून उनके शरीर में डाला जा रहा है हर साल।
भक्तिमान में देखा है किसे कोई लोग सात्विक पद पर चलते रहते हैं, सात्विक भक्तिमान का जो आचरण है सात्विक
अच्छे रास्ते सत्य के रास्ते में चलते हैं।
लेकिन अंतिम समय जब शरीर त्याग करेंगे वो लोग, त्याग करने के टाइम में वो लोग तामसिक बन जाते हैं। जैसे सात्विक पद सस्ता साहब में चलते समय मांस मछली नहीं खाते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब सूर्य त्याग करने का समय होता है वो टाइम मांस मसूरी खाता है, झूठ बोलता है, ऐसा क्या होता है?
अंत में तो गति खराब हो जाती है। सारे जीवन उन्होंने अच्छा काम किया लेकिन लास्ट में जाके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो बुद्धि भ्रष्ट होने का भी कारण तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है ना। कोई कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई एग्जाम है, एग्जाम देना है किसी को, एग्जाम सारा साल अच्छी पढ़ाई पड़ी और लास्ट में जाके बीमार पड़ गए, ये कौन से कर्मों का हिसाब किताब कहा जाएगा?
जन्म का जो सत्संग किया
फिर अच्छा काम करो, फिर अगले जन्म में अच्छा काम करो, अगर कुछ रह जाएगा
अच्छा।
तो फिर अंत मते सो गति वैसी भरनी पड़ेगी। जब तक बुरे कर्मों का पूरा नाश नहीं हुआ है तब तक कितना भी कोशिश करो अंत जो है अच्छा नहीं होने वाला।
अच्छा बाबा, ये जन्म में जो एक बीमारी है कि मैंने खूब कष्ट पड़ा है, खूब दुख पड़ा है, कष्ट पड़ा है, वो क्या अगला जन्म का कर्म फल है क्या?
और क्या, बिना कष्ट दिए कष्ट मिलता है क्या? दूसरों को कष्ट दिया है तो कष्ट मिलता है, दूसरों को सुख दिया है तो सुख मिलता है, वो तो सुख दुख का हिसाब किताब है ना।
बाबा वृंदावन में जो मधुवन है, निकुंज वन है ना, उनको पेड़ है, पेड़ मर गया, अभी भी है किस किस जगह में ब्लैक स्टोन हो गया, तो लोग बोलते हैं कृष्ण माखन खाकर हाथ पूछा था इसलिए ये स्टोन हो गया ब्लैक स्टोन।
अच्छा,
ये मतलब क्या है?
मक्खन खुद खाया और मक्खन खाने के बाद,
खाने का बाद पेड़ में हाथ लगा दिया।
हाँ,
इसलिए ये सब निशाना रहेगा,
काली में रह गई,
काला काला स्टोन हो गया, पेड़ में काला स्टोन हो गया,
काला स्पॉट आ गया,
तो स्टोन स्टोन में सनाए है, स्टोन जैसा है ना, ब्लैक स्टोन जैसा है ना, वैसे है,
काला पत्थर जैसा बन गया,
काला पत्थर जैसा बन गया है,
जाएगा जाएगा में।
तो पत्थर बुद्धि आत्मा यहाँ भी तो बनती जा रही है,
मक्खन खाने के बाद
यहाँ आत्माएं ढेर सारी एडवांस में पत्थर बुद्धि नहीं बनती जा रही है। मक्खन तो खाया किसने ने, मक्खन खाने के बाद बुद्धि बुद्धि रूपी हाथ जो है वो उनको पहुंच दिए, असली ज्ञान उनको मिल नहीं पाया, पूछा पुछाया ज्ञान मिल गया, जो पूरा ज्ञान लेगा वो क्यों हिलेगा डुलेगा, क्यों काला बनेगा, तामसी क्यों बनेगा, तामसी माने काला, तमो प्रधान, दूसरों को उल्टा ज्ञान सिखाने वाला, उल्टा रास्ता बताने वाला।
वो लोग देखने के लिए पेड़ मर गया रख दिया, काला पत्थर जगह जगह में है, बहुत पेड़ में, और कुरुक्षेत्र जो बोले इधर में युद्ध हुआ इधर में रखा,
वो मधुबन की बात थोड़ी ही है, वो बाग की बात नहीं है, वो बगीचे की बात नहीं है, ये बगीचा तैयार हो रहा है, ये मक्खन के गोले निकले हुए हैं, इन मक्खन के गोलों में जो गैंग ज्ञान की गहराई में जाकर के ज्ञान को उठाते हैं वो तो सरसब्ज बने रहेंगे, और ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं, देहधारियों के मत पे चल पड़ते हैं, तो वो जैसे कि उसने अपने हाथ पहुंच दिए,
वो सब निशाना रह गया,
वो ही काली माँ काले तमो प्रधान।
कोई कहावत है जिसमें 84 और 85 सीढ़ी का कुछ आता है,
84 में 85 सीढ़ी
कुछ ऐसा
नहीं, 84 जन्म के 84 बाप,
कोई कहावत है मुझे मालूम नहीं क्या है, कोई कहते हैं 84 में सीढ़ी है,
आपने ऐसा सुना है क्या? सुना है,
इसी को बोला गया था कि 84 में 85 में सीढ़ी चढ़ते हैं, ये सीढ़ी का चित्र इम्पोर्टेंट सा होता ही है,
84 जब पूरा होता है तो पहली सीढ़ी नहीं आती,
उसके बारे में जो पूछना
चाहिए, 84 पूरा होगा तो पहली सीढ़ी आएगी, 85वीं सीढ़ी क्यों आएगी?
इसको 85 नहीं बोला गया था तभी,
गलत बोला किसी ने,
हाँ,
मुरली में तो 85 जन्म या 85 सीढ़ियों की बात ही नहीं आई, 84 जन्म की 84 सीढ़ी,
शास्त्र में बोला 84 कोटि बार जन्म लेते हैं, हर जन्म घूमता है आत्मा 84 लाख कुछ,
मनुष्य आत्मा ही 84 लाख योनियों जैसे कर्म करती है, मनुष्य कामी कुत्ता बनता है,
तो कुत्ते जैसे कर्म करता है तो क्या हुआ, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कुत्ता कहते हैं। ऐसे ही जो बिल्लों की तरह लड़ाई लड़ता है उसको बिल्ला कहते हैं, जो सर्प जैसा आचरण करता है उसे सांप कहते हैं।
एक बात और क्लियर कर दीजिए कि जो चार नारायण दिखाए हैं वो दूसरे गेट से आते हैं, तीन लक्ष्मी है वो दूसरे गेट से आते हैं, इसके बारे में
नारायण लक्ष्मी थोड़े ही है,
वो समझाया गया था बिंदी माता को ऐसे ही, वो चार नारायण है वो एक की युगल तीसरी वो नहीं है, वो कोई अभी भी आ सकती है, तो ये ट्रैप में आम ये फंस गई थी, इसलिए ये क्लियर और कर दो तो अच्छा है।
जो भगवान का बना बनाया घर बिगाड़ेगा तो उसका अपना घर बिगड़ेगा या बचेगा, उसका अपना घर बिगड़ जाता है, उसकी यादगार में बनता है गिरजा घर, कैसा घर गिरजा, उसने संकल्प चलाए हुए हे भगवान के बने बनाए घर बिगड़ जाए तो उसका घर बिगड़ जाता है जन्म जन्मांतर के लिए, उसकी अपनी पत्नी कोई नहीं रहती। आज भी ईसाइयों में ये प्रथा चलती चली आ रही है कि एक पत्नी उनके जीवन में नहीं रह पाती, तलाक देते ही रहते हैं, किस पर विश्वास करेंगे, घरवाली अच्छी हो तो स्वर्ग बने, घरवाली व्यभिचारिणी बनेगी तो क्या बनेगा, नर्क बनेगा। तो ऐसा मणका है कोई जो भगवान को भी नहीं छोड़ता, भगवान का घर बिगाड़ेगा, भगवती को बिगाड़ेगा, भगवान की भगवती है गीता माता, गीता माता पूरी खंडन करी की हुई है, गीता माता का खंडन होगा तो सारी दुनिया बचेगी क्या, पहले तो जो खंडन करने वाला है उसकी अपनी जन्म जन्मांतर की प्राप्ति खत्म हो जाएगी। तो जो दूसरे गेट से निकलती हुई तीन दिखाई गई है, चौथी नहीं है, इधर चार दिखाए गए, चार कुमार यज्ञ के आदमी भी चार थे, एडवांस के आदमी भी ये चार होते हैं,
त्रिमूर्ति के चित्र में चार होते हैं, चार
वो तो स्वर्ग बन जाता है तब की बात है, ये संगम युग की बात है जो वहां दिखाई गई, ये टोटल नरक दिखाया गया एक तरफ शंकर की तरफ जिसका विनाश होना है, शंकर द्वारा ये कार्य होना है, ब्रह्मा द्वारा ये कार्य होना है, वो संपन्न स्टेज दिखाई गई, संपन्न स्टेज में सबकी युगल होंगी, ऐसा कोई होगा देवता सतयुग में जिसकी अपनी युगल न हो, हाँ ये होगा कि वहां राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी और किसी में नहीं जाएगी, 21 जन्म का पूरा स्नेह होगा, अटूट स्नेह होगा, बीच में टूटने वाला स्नेह नहीं होगा, 21 जन्म का पूरा साथ देता हूँ।
हाँ जो रुद्रमाला के मन की हैं, जो
रुद्रमाला के मन के आपस में भाई भाई हैं या भाई बहन है,
भाई
भाई भाई हैं, अगर आत्मिक दृष्टि उनकी पक्की हो जाती है, बाप के पक्के और सच्चे बच्चे बन जाते हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई हुए, तो भाई भाई की जो यादगार है वो रुद्रमाला है, भाई भाई भी कहीं आपस में शादी करते हैं, भाई बहनों में तो विकृति देखी जाती है दुनिया में, लेकिन भाई भाई कहीं आपस में विकार करते हो, विकार भोगते हो, ऐसा तो कभी सुना नहीं गया। चलो स्त्री चोला हो पुरुष चोला भी हो कोई कोई का, तो भी उनकी बुद्धि में ये तो नहीं आना चाहिए कि हम पति पत्नी बनेंगे, अगर आता है तो जरूर वो रुद्रमाला के मणके सनातन धर्म के तो नहीं होंगे, कौन से धर्म के होंगे, इस्लाम धर्म के होंगे, जहाँ भाई बहन भाई बहनों में आपस में शादी होती, वो संस्कार उनमें भरा हुआ है कन्वर्ट होने के, ऐसे एडवांस पार्टी में ढेर सारे निकले हैं जो इस तरह का ज्ञान सुना रहे हैं कि हम महाराजा महारानी बनेंगे, आपस में ही जोड़ियां बनाना शुरू कर दी, बिहार और उड़ीसा कितनी ढेर कन्या एडवांस पार्टी में सरेंडर हुई और सारी सारी ये उल्टा ज्ञान सुन करके और घर में बैठ गई। आपस में ही राजा रानी बन के बैठ गए।
फायदा क्या होगा
आपस में? फायदा क्या? इस जन्म के अल्पकाल की प्राप्ति तो हो ही जाती है, थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं। उन धर्मों के रिहर्सल कौन करेगा? बाहर की दुनिया वाले करेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी करेंगे, या पहले बिजरू पात्रा करेंगे? बिजरू पात्रा ही सबसे पहले बीज डालती आता रहेगा। एडवांस का संगठन खास प्रगति नहीं कर पा रहा है, थोड़े बहुत निकलते भी हैं तो वो आपस में छिटक करके जबर अलग अलग हो जाते हैं। बात बुद्धि में टिकी रहे तो खाएगा, टिकी नहीं बात उड़ गई, अनिश्चय बुद्धि हो गई, मैडम फिर खलास हो गया। बाकी प्रजा वर्ग में तो आते रहेंगे, दूध हो गई सो हो गई।